और खुदावन की हिकमत और दनाई को मांगेंगे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, सारी रात की हिफाजत और निगहबानी के लिए। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन खुदा तेरे कलाम के लिए। आज खुदावन खुदा तेरे कलाम में से हम सब की ज़रूरतों, हौसला फजाई के लिए, सलाहकारी के लिए, खुदावन नसीहत के लिए, खुदावन तो अपने पाक रूह की रहनुमाई में हम सबको सिखा। आए हुए तमाम बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, माओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने लिए खुदावंद तेरी हिकमत और दनाई चाहता हूँ, ताकि हम आज जो कुछ सीखें से सीख कर 100 गुना अपनी ज़िंदगी में फल लाएँ। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सबको याद है कि हम इफ़्सियों के खत में से इफ़्सियों 4 बाब उसकी 18वीं आयत में से सीख रहे हैं, और पिछले दिनों में हमने इतवार की इबादत में इफ़्सियों 4 बाब उसकी 18वीं आयत से 2 बातों पर गौर की थी कि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2 किस्म की तारीकी है। जिस्मानी तारीकी जो इस बात की तरफ इशारा करती है उन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए जो जिस्मानी तौर पर अंधे पैदा होते हैं, और फिर पालूस रसूल इसी आयत में उनकी अकल तारीक हो गई इसी जुमले को इस्तेमाल करता है जिसके पीछे जो सोच है उन लोगों की तरफ इशारा किया गया है जो रूहानी तौर पर अंधे हैं। सो आज हम इस पर थोड़ा और गौर करेंगे, इसमें से सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इफ़्सियों 4 बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़ें और उसमें से इस हिस्सा पर गौर करें कि उनकी अकल तारीक हो गई। सो 17वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बहुदा ख्यालात के मुआफ़क चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की रहनुमाई, हौसला फजाई और रूहानी तरक्की हो, आमीन। याद रहे कि पालूस रसूल ईमानदारों को उनकी हौसला फजाई, उनकी रूहानी तरक्की के बारे में सिखाते हुए उनको कहता है कि मैंने तुमको वो तमाम इब्तदाई और बुनियादी सच्चाइयाँ सिखा दी हैं, बता दी हैं कि तुम मसीह यसु में कौन हो, तुम्हारी हालत क्या है, तुम किस तरह मसीह में मुकद्दस ठहराए गए हो, तुम्हारी पहले जो कोई पहचान नहीं थी अब तुम मसीह में उसके बेटे और बेटियां हो, पहले तुम दुनियावी लोग थे अब तुम आसमानी शहर के रहने वाले हरेश शहर के रहने वाले लोग हो, तुम्हारा आसमानी मकाम है, तुम अब अबलीस के मुतहद नहीं बल्कि खुदावन खुदा के लोग हो। सो ये तमाम बातें पालूस रसूल पहले 3 बापों में ईमानदारों को सिखाता है, और चौथे बाब में वो अब चाहता है कि उसके सुनने वाले, पढ़ने वाले, जिनको कलाम खुदा उनका कलाम सिखाया जा रहा है, अब वो उस तमाम सीखी हुई सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों में जगा दें। इसीलिए पालूस रसूल ईमानदारों को जताता है, हुक्म देता है, उनको बहुत ही वो क्या कहता है, वाजह तौर पर कहता है कि जो तुम्हारा तरीकाकार पहले था, जो तरीकाकार गैर कौमों का उस दौर में था, कहता है कि उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजारना। बाइबल मुकद्दस में जब भी गैर कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो इसके पीछे जो रूहुल कुद्दस की हमें क्या कहते हैं कि रहनुमाई मिलती है, वो इस बात की तरफ इशारा है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा खुदा का बेटा अपना मुनजी नहीं मानता, उन सबको बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, गैर कौम के नाम से पुकारती है। तो इसीलिए हम 18वीं आयत में देखेंगे कि उनकी अकल तारीक हो गई। दो किस्म की तारीकी हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है, रूहानी तारीकी यानी कि वो जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो जो खुदा के घराने के लोग नहीं हैं, वो जो जिनकी अकल को इस जहां के खुदा ने यानी कि अबलीस ने अंधा कर दिया है, यानी कि इस दुनिया के हाकम ने जो बदरूहों पर जो चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों और ना मानने वालों को बहकाए। तो यहां पर जब पालूस कहता है कि उनकी अकल तारीख हो गई, तो रूहानी जो मायनी है उसके पीछे है कि वो तमाम जो खुदा के खानदान से तलक नहीं रखते, वो तमाम जो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं, वो तमाम जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में जगह नहीं दी, तो उनकी अकल तारीख हो गई यानी कि वो रूहानी तौर पर अंधे हैं। इसके लिए हमें रूहानी तौर पर अंधों के लिए जो बाइबल मुकद्दस वजाहत देती है, मेरे साथ देखें कि इन लोगों को जिनकी अकल तारीख हो गई, तारीकी से मुराद यानी कि मुसलसल तौर पर समझ बूझ जाती रही, मुकम्मल तौर पर उनकी क्या हो कहते हैं कि अकल और दनाई का दारोमदार दुरुस्त ना हो। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। पालूस रसूल की जब क्या कहते हैं कि 3 रोज के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आंखें बंद कर दी और वो 3 दिन के लिए अंधा हुआ, तो क्या कहते हैं कि वो देख नहीं सकता था, वो सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन देख नहीं सकता था। ये है जिस्मानी हालत। रूहानी हालत ऐसी हालत है जिसमें इंसान की अकल शुद्ध बुद्ध जिसे कहते हैं, वो उससे क्या कहते हैं, उसे समझ नहीं सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस बहुत से नामों से, बहुत से मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि लकब इस्तेमाल करती है। बाइबल मुकद्दस में लकब इस्तेमाल किया गया है गैर कौम, गैर ईमानदार, अबलीस के मुतहद, गुनाह, या कहते हैं कि गजब के फर्जंद, या फिर कहते हैं जिस्मानी लोग। तो जब हम पहला करंथियों देखते हैं, तो वहां पर पालूस रसूल इस बात को वाजह तौर पर कहता है कि जो लोग रूहानी तौर पर अंधे हैं उनको वो कहता है नफसानी, नफसानी या जिस्मानी लोग, जो रूहानी तौर पर क्या है, मुर्दा है और रूह की बातों को समझ नहीं सकते। पहला करंथियों 2 बाप उसकी 10वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर पालूस रसूल कहता है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। ईमानदार, हम का लफ्ज वो कहां पर इस्तेमाल कर रहा है, ईमानदारों के लिए, क्रंथस के ईमानदार रहने वाले, और अपने आप को वो मिलाकर कहता है पालूस रसूल, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। किन बातों को, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल और समझ में आई, यानी कि खुदा का कलाम, खुदा का अलहाम, खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी। और लिखा है क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर देता है, खुदा का रूह। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सवाए इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। हम में से कोई भी नहीं जो बता सकता है कि अभी चाचा मुबारक जी क्या सोच रहे हैं, एक एक सेकंड की बात। सिर्फ हम जान सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, या खुदा का पाक रूह जानता है हर एक सोच को। इसलिए लिखा है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। खुदा के रूह के बगैर कोई भी खुदा की बातों को समझ नहीं सकता। आगे चल के पालूस रसूल इसे वाजिया करेगा, मगर हमने 12वीं आयत, मगर हमने ना दुनिया की रूह पाई बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। जब यहाँ पर लफ्ज दुनिया का रूह, तो दुनिया के रूह से मुराद उसकी कहने की मतलब यही है कि वो दुनियावी हैं, वो जिस्मानी हैं, वो रूहानी नहीं। बाइबल मुकद्दस ईमानदारों को इसीलिए रूहानी, आसमानी और अबदी लोग कहती है। इसमें हम सब की कोई ऐसी खासियत नहीं, बल्कि सिर्फ एक बात पर यकीन करने से कि यीशु मसीह खुदा का बेटा सलीब पर मुआ, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और वापस अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और जो कोई इस बात पर यकीन करता है वो क्या है? खुदा के खानदान का क्या है? रुकन है, हिस्सा है। और 13वीं आयत में लिखा है, और हमने उन बातों को उन लफ्जों में नहीं बयान, 13वीं आयत में लिखा है, और हम उन बातों को उन लफ्जों में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन लफ्जों में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। नए सिरे से पैदा हुए ही लोग क्या हैं? उनकी अकलें रोशन हैं, उनकी रूहानी आंखें खुली हैं, उनके अंदर खुदा का पाक रूह है, और जो नए सिरे से पैदा हुए हैं वो ही खुदा के रूह की बातों को समझ सकते हैं। और 14वीं आयत में लिखा है, पालूस कहता है, मगर नफसानी आदमी, नफसानी से मुराद यानी कि जो जिस्मानी है, जो जमीनी है, जिसमें अभी तक खुदा का रूह नहीं बसा, जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसे बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? नफसानी, जिस्मानी, जमीनी। जिस्मानी या नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, वो कभी भी कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है। जिस्मानी आदमी, जब आप उनसे बाइबल मुकद्दस की बात करेंगे, पहली बात तो उनको समझ नहीं आएगी कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ कितनी गहरी और अहम और खुदा की हिकमत की बातें हैं। इसलिए पालूस रसूल जब कहता है उनकी अकल तारीख हो गई, तो वो बयान करता है उन लोगों के बारे में जिनको इस जहां के खुदा ने क्या किया है? अंधा किया है। बाइबल मुकद्दस में इबलीस के लिए हाकम, हवा की अमलदारी का, जिसे कह सकते हैं कि शहजादा, प्रिंस जिसे कहा जाता है, और शैतानी तस्वीरों पर इख्तियार रखने वाला, क्या कहते हैं कि उनका रहनमा, नूरानी फरिश्ता, झूठ बोलने वाला, पुराना अजदहा, फरेब देने वाला, अल्जाम लगाने वाला, बहुत दफा घरों में फसाद डालने वाला, बहुत से नामों से उसे पुकारा गया है। इसीलिए जब हम दूसरा करंथियों 4 बाब देखते हैं, दूसरा करंथियों 4 बाब जब हम उसकी 3री आयत को देखते हैं, तो पालूस रसूल ईमानदारों को हौसला बढ़ाता है कि अगर कोई अगर यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहा, अगर कोई निजात का पैगाम नहीं समझ रहा, तो इसके पीछे एक वजह है। और वो वजह क्या है? 3री आयत में लिखा है, और अगर, पालूस रसूल कहता है, और अगर हमारी खुशखबरी पर, यानी कि यीशु मसीह का जो पैगाम वो दे रहा था, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, पर्दा पड़ा यानी कि अगर वो ढकी हुई है, अगर वो क्या है, छुपी हुई है, समझ नहीं आ रही, तो क्या कहता है? तो हलाक होने वालों के वास्ते पड़ा है, यानी कि उन हलाक होने वालों के लिए। मिसाल के तौर पर जो फरिश्ते आसमान से गिरे, जो अबलीस के पैरोकार हैं, उनको जितनी मर्जी भी खुशखबरी सुनाई जाए, हमें बयान नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है जब अबलीस ने गुनाह किया, तमाम फरिश्तों ने खुदावंद यीशु मसीह की सरकशी की, उसका इनकार किया तो ज़रूर खुदावन जो रहम दिल खुदा है, जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, फरिश्तों को ज़रूर ये दावत दी होगी कि हाँ तुमने गलती की है, तुमने तकब्बर किया कि मैं यीशु मसीह की मानद बनूंगा, मैं सारी दुनिया पर हुकूमत करूंगा, लेकिन मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन फरिश्तों ने क्या किया, उस पैगाम को कबूल ना किया होगा। इसीलिए मत्ती की इंजील उसके 25वें बाप में लिखा है कि ये जो आग की झील है, जो हलाकत है, जो दोजक है, खासकर फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, उन फरिश्तों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह और खुदा की क्या की, बगावत की, और उनकी अकल पर ये पर्दा इसीलिए पड़ा है ताकि वो हलाक हों। और चौथी आयत में कहता है एक और नाम जो गैर कौमों के साथ साथ एक और नाम इस्तेमाल किया गया है जिनकी अकल तारीख हो गई है, यानी कि गैर ईमानदार, बे ईमान लोग, यानी उन बे ईमानों के वास्ते, बे ईमानों से वास्ते हरगिज नहीं कि किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी का कुछ चुराया है। बाइबल मुकद्दस जब कहती है बे ईमान, तो उसका मुराद यानी कि जो कोई खुदावन खुदा पर, इब्राहिम, इजहाक, यकूब के खुदा पर और यीशु मसीह जो मसीहा है उस पर यकीन नहीं करता, उसे बे ईमान कहती है। उन बे ईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को यानी के समझों को, यानी के सोचने का जो दारोमदार है उस सारे निज़ाम को, इस जहां के खुदा ने, यानी ये ज़मीनी जो दुनिया है, ज़मीन से लेकर दूसरे आसमान तक अबलीस को इख्तियार दिया गया है, जिसमें वो बदरूहों पर, जिसमें वो लोगों को बहकाता है, जिसमें वो बहुत से बुरे काम करता है। जब हम इफिसियों 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग आदमियों के साथ नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में है। तीसरे आसमान पर शैतान को कोई इख्तियार नहीं, लेकिन हवा पर, फिजा पर, इस दुनिया में वो घूमता फिर रहा है, जैसे आपको याद होगा अय्यूब की कहानी में, कि वो इस जमीन पर क्या करता है, लोगों को बहकाता है, लोगों को खुदावंद की राह से मोड़ता है, और उसका काम यही है कि लोग हलाकत में जाएं, लोग दोजक में जाएं। इसीलिए पालूस कहता है यानी उन बे ईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहां के खुदा ने, इस जहां का खुदा, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है अबलीस के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अबलीस नहीं चाहता कि लोग निजात पाएं। सो ये बात पालूस रसूल इफिसियों 4 बाब उसकी 18वीं आयत में कहता है कि उनकी अकलें तारीख हो गई, वो समझ बूझ में बिल्कुल बुद्धू बन गए, उनकी अकलों को क्या कर दिया, सुन कर दिया। इसलिए आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर आप किसी किस्म की मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, खानदानी, शादीशुदा जिंदगी, कारोबार, किसी किस्म के हालात से आपका सामना है, तो याद रखें कि आपका और मेरा एक मुखालफ है, उसका नाम अबलीस, शैतान है, जो नहीं चाहता कि हम सब इत्मीनान और सुकून से इस जिंदगी को गुजारें। यीशु मसीह ने हरगिज नहीं कहा कि मुसीबत और दुख नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे तमाम दुखों मुसीबतों में तुम्हें क्या दूंगा, इत्मीनान दूंगा। सो आप में से जितने भी जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो उसका बदन है, उसकी क्या कहते हैं कलीसिया है, आप सब की रूहानी आंखें रोशन हैं, आप उसके कलाम को समझ सकते हैं, आप उसकी क्या है, दुल्हन है, आपको क्या कहा गया है, जमीन पर दुनिया का नूर कहा गया है। आगे चलकर हम जिस्मानी तारीकी के बारे में आने वाले दिनों में सीखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात पर हम खत्म करें। इफिसियों 5 बाप उसकी पहली आयत, पालूस रसूल यहां कहता है, मेरे साथ सब कहें, पस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानत बनो। आमीन। खुदा की मानत मानने से मुराद यानी कि उसके कहे के मुताबिक जिंदगी गुजारना, रहम करना, माफ करना, हौसला अफजाई करना, एक दूसरे के लिए बरकत चाहना, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी बनना, एक दूसरे के लिए वो सब कुछ करना जो खुदा चाहता है हम सब के लिए। हमें खुदा की मानद अबलीस की तरह नहीं बनना तकब्बर में, या कहना कि खुदा हम अपनी ज़िंदगी के खुद हैं। सो बस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो, आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप तेरे हजूर आता हूँ, आज बहुत से ख़ानदान हैं जो खुदावन मुश्किलात में परेशानी में से गुजर रहे हैं, और हमारा मुखालफ नहीं चाहता बल्कि वो यही चाहता है कि अपने दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में अय्यूब नबी की बीवी की तरह कहें कि वो खुदा जिसने तुझ पर यह सब कुछ होने दिया है लानत कर और मर जा। खुदा बाप हम सबको हिकमत और दनाई दे, जैसे तूने अय्यूब नबी की अकल को रोशन किया हुआ था खुदावन, वही रूह हम सब में है उस पाक रूह की रहनुमाई में। हम सबको खुदावन कुव्वत और ताकत दे ताकि तारीकी की उन तमाम बातों पर गालब आए। तमाम कुव्वतों को खुदावन खुदा तेरे जोर में खुदावन खुदा फतह करते हुए मसीही फतामंद जिंदगी गुजारें। आज सबके साथ हो, जो काम ये करें जी जान खुदावन जी जान से करें और तेरे लिए करें। जैसे तूने इसराइल के लिए बरकत चाही कि तुम आते जाते बाहर आते जाते जिस चीज को हाथ लगाओगे वो बरकत का बायस होगी, खुदा बाप अपने लोगों को बरकत दे। बरकत तू ही दे सकता है, वही बरकत खुदावंद जो तेरी तरफ से आती है। अपने लोगों को बरकत दे, अपने तमाम बंदों के साथ हो, बंदियों के साथ हो। यीशु मसीह के नाम में तेरा पाक रूह सब की रहनुमाई करे। यीशु के नाम में आमीन।